आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश हैं आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में स्वास्थ्य और अस्पताल कर्मी जाएंगे हड़ताल पर। भारत ने नेपाल में जारी किया रुपए कार्ड। और एलिसा हीली बनी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में शतक जमाने वाली पहली विकेट कीपर। न्यू साउथ वेल्स के हजारों स्वास्थ्यकर्मी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। ये पैरामेडिक्स और नर्सों की हड़ताल के बाद की जा रही दूसरी हड़ताल है। राज्य में कानूनी तौर पर पब्लिक सेक्टर में वेतन 2.5% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हेल्थ सर्विसेज यूनियन का कहना है कि महंगाई दर 3.5% पर रहते हुए 2.5% की बढ़त नाकाफी है। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ सेक्टर यूनियन के सचिव जेराड हेस का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों को राजनेताओं द्वारा महामारी के दौरान अपने कार्य का धन्यवाद नहीं, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। श्री हेस का कहना है कि गुरुवार 7 अप्रैल को होने वाली हड़ताल में बड़े शहरी अस्पतालों में 4 घंटे के लिए और क्षेत्रीय अस्पतालों में 2 घंटे के लिए काम रोक दिया जाएगा। यूनियन का कहना है कि इस हड़ताल में एम्बुलेंस, सफाई, अलाइड हेल्थ, एडमिन, सिक्योरिटी, केटरिंग और वार्ड कर्मी शामिल रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बीते 24 घंटे में 13 कोरोना मृत्यु दर्ज की हैं। यह आंकड़ा न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों से आता है। न्यू साउथ वेल्स में 16,807 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,355 लोग इस घातक बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पाने वाले संक्रमितों की संख्या 50 हो गई है। दूसरी ओर विक्टोरिया ने 9,008 नए संक्रमण दर्ज किए हैं। राज्य में 307 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 18 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। यह तब आता है जब कल यानी सोमवार को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान अपने अगले चरण में प्रवेश कर जाएगा। कल से कुछ खास समूहों के लिए टीके की चौथी खुराक भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इन समूहों में 65 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति, कम से कम 50 वर्ष के इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई, डिसेबिलिटी व्यवस्था निवासी और कम प्रतिरोधक शक्ति वाले व्यक्ति शामिल रहेंगे। जहां करीब 30% ऑस्ट्रेलियाई जो बूस्टर खुराक के लिए मान्य होते हुए भी अब तक इस तीसरी खुराक को नहीं ले सके हैं, वहीं बुजुर्ग और संवेदनशील व्यक्तियों के लिए कल से दूसरी बूस्टर खुराक भी उपलब्ध हो जाएगी। इस खुराक का प्रावधान आने वाली सर्दियों में संक्रमण की संभावित बढ़त को देखते हुए किया गया है। इन समूहों में 65 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति, कम से कम 50 वर्ष के इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई, डिसेबिलिटी व्यवस्था निवासी और कम प्रतिरोधक शक्ति वाले व्यक्ति शामिल रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 4.7 मिलियन लोग इस खुराक के लिए पात्र होंगे, लेकिन आशंका ये है कि करीब 2 लाख लोग ही इस चरण की शुरुआत में ये खुराक पा सकेंगे। लोग पहली बूस्टर खुराक के 4 महीने बाद दूसरी बूस्टर खुराक ले सकते हैं। एक संसदीय सुनवाई में यह बताया गया है कि शुरुआत में ये आंकड़ा कम रहेगा। ऐसा अनुमानित है कि मई और जून के महीनों में टीका लेने वालों की संख्या में इजाफा देखा जाएगा। फेडरल सरकार ने साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक घरेलू हिंसा पीड़ित समर्थन संगठन के लिए फंडिंग की घोषणा की है, जो अब अपने राज्यव्यापी आर्थिक सलाह प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकेगी। ज़ाहरा फाउंडेशन को $5.5 मिलियन की फंडिंग दी जाएगी, ताकि वे देश भर में महिलाओं के लिए आर्थिक सलाह के कार्यक्रम चला सकें। इस संस्था की स्थापना सितंबर 2015 में ज़ाहरा अब्राहिम ज़देह की याद में की गई थी, जिनकी 2010 में सौयों चश्मदीद गवाहों के सामने एडिलेड में हत्या कर दी गई थी। फाउंडेशन के सह संस्थापक और सुश्री जहरा के पुत्र अरमान अब्राहिम जदे का कहना है कि आर्थिक निर्भरता हिंसा से ना निकल पाने का एक बड़ा कारण है।
We know that to this day, the number one reason women don't flee abusive homes is because they fear for their own well-being and their well-being of their children. But the second reason is because they are financially dependent on their abusive partners.
लेबर कोषाध्यक्ष जिम चार्मस ने कहा है कि अगर मई में उनकी पार्टी चुनावों के बाद सत्ता में आती है तो उनके मल्टीनेशनल कंपनियों को लक्ष्य पर रखते हुए दूसरे देशों के साथ काम करने की योजना के अलावा टैक्स में कोई और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आज लेबर की कैंपेन रैली शुरू होने से पहले ब्रिस्बेन में बात करते हुए डॉक्टर चार्मस ने कहा कि उनकी पार्टी ने बार बार कहा है कि पिछले चुनावों की टैक्स नीतियां वे इस चुनाव में नहीं ला रहे हैं।
We've made it very clear that we don't have any proposals for tax increases beyond working with other countries to make the multinational tax regime fairer. Now, there are other ways to deal with this legacy of $1 trillion in debt and not enough to show for it. There are other ways to fund our commitments responsibly so that we do the right thing by the budget, by people and by their economy.
कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि उनकी सरकार मल्टीनेशनल एजेंडा पर काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जरिए एक वैश्विक कर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। विक्टोरिया सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना काल में वैकल्पिक सर्जरी की लंबी हुई वेटलिस्ट से निपटने के लिए वे $1.5 बिलियन का निवेश करेगी। पिछले दो साल में कोरोना प्रतिबंधों के चलते ये सूची लंबी हो गई थी और बीते दिसंबर के अनुमान के अनुसार राज्य में करीब 80,000 लोग वैकल्पिक सर्जरी की प्रतीक्षा में हैं। जनवरी में श्रेणी 2 और 3 की सर्जरी रोक दी गई थी ताकि कोरोना की रोकथाम की जा सके। नए कैचअप प्लान के तहत 2023 तक सर्जरी क्षमता को 125% तक बढ़ाया जाएगा और अगले साल 40,000 अतिरिक्त सर्जरियां की जाएंगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने कीव के आसपास के सारे इलाके पर रूस के हमले के बाद पहली बार फिर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। जहां रूस का सैन्य बल पूर्व में खुद को फिर संगठित कर रहा है, वहीं कीव के उत्तर के इलाकों में रूसी टैंकों के अवशेष पड़े हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति सलाहकार ओकेसी अरेस्टोविक का कहना है कि उनकी सेना ने इस हफ्ते में 30 से अधिक गांव और कस्बे रूस के कब्जे से छुड़ाए हैं। राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अस्थायी रूप से कब्जे आए गए इलाकों में अब यूक्रेनियाई ध्वज नजर आने लगे हैं।
Our defenders continue to regain control over communities in the Kiev and Chernihiv regions. There are more and more national Ukrainian flags being flown in areas that were temporarily occupied. The Ukrainian armed forces do not let the invaders go without a fight. They inflict damage. They're destroying everyone we can reach. We're strengthening our defenses in the eastern direction and in the Donbas. We are aware that the enemy has reserves to increase pressure in the east.
रूस ने कीव के इलाके से अपनी सेना को वापस लेने के अपने फैसले को शांति वार्ता की ओर एक कदम बताया है। शनिवार को यूक्रेनियाई सैनिकों ने राजधानी कीव के उत्तरी भाग में बूचा एवं अन्य गांवों पर फिर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। एसोसिएटेड प्रेस पत्रकारों ने सड़कों पर 6 नागरिकों के मृत शरीर देखे थे। यूक्रेनियाई सैनिकों ने इन्हें टैंक से बांधकर सड़क से हटाया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सेना को यह भय था कि इन शरीरों में बॉम्ब लगाए गए हो सकते हैं। निवासियों का मानना है कि इन लोगों को रूसी सेना ने मारा था। एक नागरिक का कहना है कि रूसी सेना नागरिकों को बेरहमी से मार रही थी।
Those people were just walking and they shot them without any reason. Bang. In the next neighborhood, Stikolka, it was even worse. They would shoot anyone without asking any questions.
और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। बता दें पिछले 24 घंटों में 1,096 नए मामले फिर सामने आए हैं और 81 लोगों ने इस घातक बीमारी के चलते अपनी जान गंवाई है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 13,000 के करीब है और देश भर में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 184.66 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। वहीं नेपाल शनिवार को रुपे कार्ड जारी करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देओबा ने संयुक्त रूप से नेपाल में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली रुपे कार्ड का शुभारंभ किया। नेपाल के अलावा भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और देओबा ने व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग समेत अन्य व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत कर इस कार्ड का शुभारंभ किया। रुपे कार्ड योजना 2000 भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान की घरेलू, खुली और बहुपक्षीय प्रणाली के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना से जुड़े लोगों ने कहा कि नेपाल में कार्ड की शुरुआत प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग के साथ वित्तीय सुविधा और सशक्तिकरण के लिए भी एक नया रास्ता खोलेगी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस मौके पर कहा कि
The launch of the RuPay card in Nepal is also a significant milestone in enhancing financial linkages between the two countries. With this launch, the domestic variant of RuPay card will work in about 1,400 POS machines in Nepal. It is expected to facilitate bilateral tourist flows, strengthen people-to-people linkages, and further contribute to establishing RuPay's international credibility, credentials, and visibility.
और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलिया डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.92 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 75 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में एलिसा हीली ने धमाका करते हुए 170 रन की पारी खेली। अपनी पारी में हीली ने 138 गेंदों का सामना किया जिसमें 26 चौके जमाए। हीली ने 100 गेंद पर अपना शतक जमाया था। बता दें कि महिला वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए एलिसी हीली के पति मिशेल स्टार्क भी स्टेडियम में मौजूद थे। ऐसे में हीली ने शतक जमाया तो पति स्टार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आईसीसी ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जैसे ही हीली ने अपना शतक पूरा किया वैसे ही स्टार्क अपनी सीट से उठकर अपनी पत्नी के लिए ताली बजाते नजर आए। एलिसी हीली 170 रन की पारी के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहीं। हीली महिला वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला विकेटकीपर बन गई हैं। वहीं वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाली दूसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गई हैं। और अंत में कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर एक नज़र। पर्थ में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 37 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में धूप छांव का मौसम रह सकता है। अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में कल धूप छांव का मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में भी कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।